This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Hindi, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Hindi, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de Hindi, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
पाठांश क इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अब आप रुक्मणी दास जी का भाषण सुनेंगे कि वो कैसे शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हुई।
जागृति मंच को मेरा शत शत नमन। मेरा नाम रुक्मणी दास है। मैं 65 वर्ष की हूँ। श्रेष्ठ समाज सेवी का सम्मान पाकर मैं फूली नहीं समा रही हूँ। इस मंच को अपना आभार प्रकट कर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। आज जीवन यापन संघर्षपूर्ण है। इस तकनीकी युग में अगर शिक्षित ना हो तो साधारण से साधारण काम कर पाना मुश्किल है। मैं पहले अनपढ़ थी, पर अब साक्षर हूँ। इसका श्रेय मेरी बेटी, जो अब एक वकील है, को जाता है। मैंने कठिन परिस्थितियों में, जैसे पैसों का अभाव, रहने का कोई स्थायी ठिकाना न होना आदि में अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी ने भी कमर तोड़ मेहनत कर पढ़ाई की और अव्वल अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई। मेरी बेटी मुझे प्रोत्साहित कर शिक्षित करने लगी। शुरुआती दौर मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैं औपचारिक शिक्षा की आयु पार कर चुकी थी। परंतु मैंने हिम्मत ना हारी। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर शिक्षा प्राप्त की। मुझे ज्ञात है कि आज के युग में बौद्धिक कौशल विकास जरूरी है। ये जान मैंने तन मन लगाकर कठोर परिश्रम कर विद्योपार्जन किया। इस दौरान मेरी समवर्षीय सहेलियां फालतू गपशप में मग्न रहतीं और कभी कभार मेरा मजाक भी उड़ातीं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मेरे मनोबल को कम करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं अविचल अपनी बेटी से प्रोत्साहन पा अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती गई। साक्षर होने पर मेरी कार्यक्षमता बढ़ती गई। मैंने अपना व्यापार खोला, बैंक का काम स्वयं करने लगी। मेरी पुरानी सहेलियां अब मुझसे अपने लिए मदद मांगती हैं और मैं दिल खोल कर उनकी मदद करती हूँ। अब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अशिक्षित रहकर कोई भी समय के साथ नहीं चल सकता। गांव में लोग अब मेरा आदर करते हैं, कई विषय पर सलाह परामर्श लेते हैं। मैं समाज सेविका हूँ और गांव की सभी अनपढ़ महिलाओं और बच्चों को विद्योपार्जन के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भी पढ़ाती हूँ। लोगों के छिपे कौशल को पहचान उन्हें अपने अनुभव से निखारती हूँ। मेरे विचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
जागृति मंच को मेरा शत शत नमन। मेरा नाम रुक्मणी दास है। मैं 65 वर्ष की हूँ। श्रेष्ठ समाज सेवी का सम्मान पाकर मैं फूली नहीं समा रही हूँ। इस मंच को अपना आभार प्रकट कर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। आज जीवन यापन संघर्षपूर्ण है। इस तकनीकी युग में अगर शिक्षित ना हो तो साधारण से साधारण काम कर पाना मुश्किल है। मैं पहले अनपढ़ थी, पर अब साक्षर हूँ। इसका श्रेय मेरी बेटी, जो अब एक वकील है, को जाता है। मैंने कठिन परिस्थितियों में, जैसे पैसों का अभाव, रहने का कोई स्थायी ठिकाना न होना आदि में अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी ने भी कमर तोड़ मेहनत कर पढ़ाई की और अव्वल अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई। मेरी बेटी मुझे प्रोत्साहित कर शिक्षित करने लगी। शुरुआती दौर मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैं औपचारिक शिक्षा की आयु पार कर चुकी थी। परंतु मैंने हिम्मत ना हारी। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर शिक्षा प्राप्त की। मुझे ज्ञात है कि आज के युग में बौद्धिक कौशल विकास जरूरी है। ये जान मैंने तन मन लगाकर कठोर परिश्रम कर विद्योपार्जन किया। इस दौरान मेरी समवर्षीय सहेलियां फालतू गपशप में मग्न रहतीं और कभी कभार मेरा मजाक भी उड़ातीं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मेरे मनोबल को कम करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं अविचल अपनी बेटी से प्रोत्साहन पा अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती गई। साक्षर होने पर मेरी कार्यक्षमता बढ़ती गई। मैंने अपना व्यापार खोला, बैंक का काम स्वयं करने लगी। मेरी पुरानी सहेलियां अब मुझसे अपने लिए मदद मांगती हैं और मैं दिल खोल कर उनकी मदद करती हूँ। अब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अशिक्षित रहकर कोई भी समय के साथ नहीं चल सकता। गांव में लोग अब मेरा आदर करते हैं, कई विषय पर सलाह परामर्श लेते हैं। मैं समाज सेविका हूँ और गांव की सभी अनपढ़ महिलाओं और बच्चों को विद्योपार्जन के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भी पढ़ाती हूँ। लोगों के छिपे कौशल को पहचान उन्हें अपने अनुभव से निखारती हूँ। मेरे विचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट 30 सेकंड हैं। पाठांश ख। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अभी आप साक्षात्कारकर्ता और कथक जगत की उभरती कलाकारा पूजा बद्रीनाथ के बीच एक वार्ता सुनेंगे।
नमस्कार। आज हमारे कार्यक्रम वार्ता कला प्रेमी में कथक जगत की उभरती कलाकारा पूजा बद्रीनाथ आई है। आपका स्वागत है।
नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है।
सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताए कि आपने अन्य कलाओं में से नृत्य को ही क्यों चुना।
मैं मानती हूँ कि बचपन की कुछ बातें आपके जीवन को रुख देती हैं। बचपन में मेरी माताजी गाना सुनते समय मुझे अपने हाथों में थाम झूमती थीं। हम दोनों को बहुत आनंद आता था। बस फिर क्या था, छुटपन से ही कथक सीखने लगी। मेरे गुरुजी बहुत प्रेम से मेरी त्रुटियों को सुधारते, जिससे मेरी कला संवरी और मैं कलाकार बन गई।
आपने कथक के जगत में कैसे स्थान बनाया, इसके बारे में कुछ बताइए।
ये पुरानी नृत्य शैली हमारी गौरवशाली संस्कृति का प्रदर्शन करती है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुझे अपनी कला प्रदर्शन का निमंत्रण मिलता था। सभा में लोगों ने मेरी कला को सराहा और ख्याति मिलती गई।
हम जानते हैं कि कथक की वेशभूषा, संगीत मनमोहक है, मगर देखा जा रहा है कि युवा फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। शास्त्रीय नृत्य में इनकी रुचि कम है, आपके क्या विचार हैं?
देखिए, ये तो लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मेरे लिए ये हमारे देश की सबसे पुरानी नृत्य शैली है और मेरी आराधना है।
आज के व्यस्त जीवन में लोग करियर बनाने, नौकरी और दूसरे कारणों से नृत्य करना छोड़ देते हैं, आपके क्या विचार है?
मुझे ऐसा नहीं लगता। आजकल जो मैं देख सुन रही हूँ कि कोई भी नृत्य करने से तनाव मिट जाता है। नृत्य कामकाजी लोगों की मानसिक, आत्मिक और शारीरिक थकान को दूर करने का अनूठा जरिया बन चुका है।
पूजा जी, कथक में तो नर्तक अपने भाव एवं मुद्रा से संप्रेषण करते हैं ना?
जी हाँ, नृत्य कोई भी हो, शारीरिक गतिविधियों और चेहरे के हाव भावों के बीच अनुरूपता और सामंजस्य होना बेहद जरूरी है।
सफल प्रदर्शनकारी नर्तक के कुछ आवश्यक गुणों को आप हमारे साथ साझा करें।
शास्त्रीय नृत्य में लगन, समर्पण और रियाज महत्वपूर्ण गुण हैं, पर सबसे जरूरी ये है कि नर्तक अपने को मजबूत रखे और नतीजे पर ध्यान दिए बिना बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें।
कृपया हमें अपना लक्ष्य बताएं।
मेरा लक्ष्य इस महान सांस्कृतिक शैली की सेवा करना है। मैं कथक नृत्य को दुनिया के जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ।
अपना बहुमूल्य समय हमारे संग बांटने के लिए धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
नमस्कार। आज हमारे कार्यक्रम वार्ता कला प्रेमी में कथक जगत की उभरती कलाकारा पूजा बद्रीनाथ आई है। आपका स्वागत है।
नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है।
सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताए कि आपने अन्य कलाओं में से नृत्य को ही क्यों चुना।
मैं मानती हूँ कि बचपन की कुछ बातें आपके जीवन को रुख देती हैं। बचपन में मेरी माताजी गाना सुनते समय मुझे अपने हाथों में थाम झूमती थीं। हम दोनों को बहुत आनंद आता था। बस फिर क्या था, छुटपन से ही कथक सीखने लगी। मेरे गुरुजी बहुत प्रेम से मेरी त्रुटियों को सुधारते, जिससे मेरी कला संवरी और मैं कलाकार बन गई।
आपने कथक के जगत में कैसे स्थान बनाया, इसके बारे में कुछ बताइए।
ये पुरानी नृत्य शैली हमारी गौरवशाली संस्कृति का प्रदर्शन करती है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुझे अपनी कला प्रदर्शन का निमंत्रण मिलता था। सभा में लोगों ने मेरी कला को सराहा और ख्याति मिलती गई।
हम जानते हैं कि कथक की वेशभूषा, संगीत मनमोहक है, मगर देखा जा रहा है कि युवा फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। शास्त्रीय नृत्य में इनकी रुचि कम है, आपके क्या विचार है?
देखिए, ये तो लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मेरे लिए ये हमारे देश की सबसे पुरानी नृत्य शैली है और मेरी आराधना है।
आज के व्यस्त जीवन में लोग करियर बनाने, नौकरी और दूसरे कारणों से नृत्य करना छोड़ देते हैं, आपके क्या विचार है?
मुझे ऐसा नहीं लगता। आजकल जो मैं देख सुन रही हूँ कि कोई भी नृत्य करने से तनाव मिट जाता है। नृत्य कामकाजी लोगों की मानसिक, आत्मिक और शारीरिक थकान को दूर करने का अनूठा जरिया बन चुका है।
पूजा जी, कथक में तो नर्तक अपने भाव एवं मुद्रा से संप्रेषण करते हैं ना?
जी हाँ, नृत्य कोई भी हो, शारीरिक गतिविधियों और चेहरे के हाव भावों के बीच अनुरूपता और सामंजस्य होना बेहद जरूरी है।
सफल प्रदर्शनकारी नर्तक के कुछ आवश्यक गुणों को आप हमारे साथ साझा करें।
शास्त्रीय नृत्य में लगन, समर्पण और रियाज महत्वपूर्ण गुण हैं, पर सबसे जरूरी ये है कि नर्तक अपने को मजबूत रखे और नतीजे पर ध्यान दिए बिना बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें।
कृपया हमें अपना लक्ष्य बताएं।
मेरा लक्ष्य इस महान सांस्कृतिक शैली की सेवा करना है। मैं कथक नृत्य को दुनिया के जन जन तक पहुंचाना चाहती हूं।
अपना बहुमूल्य समय हमारे संग बांटने के लिए धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट 30 सेकंड हैं। पाठांश ग। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अब आप कैटरीना थॉमस की किताब से उनकी जीवनी का एक अंश भाषण स्वरूप सुनेंगे।
नमस्ते, मेरा नाम कैटरीना थॉमस है। मैं अधिक पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी कई रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी सफलता की कहानी, जिसे मैंने अपनी किताब मनोबल की जीत में लिखा है, साझा करना चाहती हूँ। मध्यवर्गीय महिलाएं इससे प्रेरणा प्राप्त कर घर बैठे अपने शौक को आमदनी का जरिया बना सकेंगी, क्योंकि आज वैश्वीकरण का हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में हुआ। माताजी मेरे जन्मते भगवान को प्यारी हो गईं। प्राथमिक शिक्षा पूरी की ही थी। पिताजी फैक्ट्री दुर्घटना में दुनिया से चल बसे। माँ की ममता, पिता की छाया, हंसता खेलता बचपन बहुत छोटी उम्र में ही छिन गया। मजबूरन अपना पेट पालने के लिए मैं मजदूरी करने लगी। मैं जिंदगी में कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रखती थी। मुझे खुद पर भरोसा था, इसलिए गांव छोड़ शहर के लिए निकल गई। एक कंपनी में काम कर लिया। मेरी लगन, सहनशीलता और परिपक्वता देख कंपनी के मालिक ने मेरी तनख्वाह बढ़ाई और एक जिम्मेदार पदाधिकारी बना दिया। इस अवसर ने मेरा हुनर संवारा। कुछ वर्षों तक दूसरों को देख देख प्रबंधन कौशल सीखा और स्वयं व्यवसाय करना चाहा। मैं जानती थी कि वैश्वीकरण का प्रौद्योगिकी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैंने स्मार्टफोन खरीदा और उसका प्रयोग करना सीखा। अपनी नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन इस दुविधा में पड़ गई किस पर अपना श्रम लगाऊं। मैं अच्छा खाना बनाती थी तो इसी गुण पर मोहर लगाई। शुरुआती दौर में अपने घर के राशन से खाना बनाकर लोगों को मुफ्त खिलाती थी। लोग स्वादिष्ट मुफ्त खाना पसंद करते, परंतु जब कीमत लगाई तो उनकी प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। 3-4 महीने तक हफ्ते में एक बार कोई खरीदता था। मेरी जमा पूंजी भी खत्म हो रही थी। मुझे यकीन था कि मेरे हाथ का बना लजीज खाना ग्राहकों को बेहद पसंद है। अब मैं अपनी इच्छा शक्ति पहचान गई और पाक कला में अपना कदम रख प्रसिद्धि पाने की ठान ली। जगत जाल के जरिए कंपनियों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय के कैंटीन में अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया। मेरी पाक कला और खाने के जायके को लोगों ने सराहा। मैंने सफलतापूर्वक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और हाथ बंटाने के लिए कई बेसहारा महिलाओं को आश्रय दिया। उनको प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान किया ताकि इनका परिवार खुशहाल रह सके। प्यारे बंधुओं, मैंने वैश्वीकरण का फायदा जान केवल परिश्रम, ईमानदारी और दृढ़ता से आज ये मुकाम हासिल किया है। कोई भी अगर समझदारी से अपने कौशल को पहचान, हौसला बुलंद कर मैदान में उतर जाए तो कुछ भी मुमकिन है। मुझे शांति और सब्र से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
नमस्ते, मेरा नाम कैटरीना थॉमस है। मैं अधिक पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी कई रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी सफलता की कहानी, जिसे मैंने अपनी किताब मनोबल की जीत में लिखा है, साझा करना चाहती हूँ। मध्यवर्गीय महिलाएं इससे प्रेरणा प्राप्त कर घर बैठे अपने शौक को आमदनी का जरिया बना सकेंगी, क्योंकि आज वैश्वीकरण का हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में हुआ। माताजी मेरे जन्मते भगवान को प्यारी हो गईं। प्राथमिक शिक्षा पूरी की ही थी। पिताजी फैक्ट्री दुर्घटना में दुनिया से चल बसे। माँ की ममता, पिता की छाया, हंसता खेलता बचपन बहुत छोटी उम्र में ही छिन गया। मजबूरन अपना पेट पालने के लिए मैं मजदूरी करने लगी। मैं जिंदगी में कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रखती थी। मुझे खुद पर भरोसा था, इसलिए गांव छोड़ शहर के लिए निकल गई। एक कंपनी में काम कर लिया। मेरी लगन, सहनशीलता और परिपक्वता देख कंपनी के मालिक ने मेरी तनख्वाह बढ़ाई और एक जिम्मेदार पदाधिकारी बना दिया। इस अवसर ने मेरा हुनर संवारा। कुछ वर्षों तक दूसरों को देख देख प्रबंधन कौशल सीखा और स्वयं व्यवसाय करना चाहा। मैं जानती थी कि वैश्वीकरण का प्रौद्योगिकी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैंने स्मार्टफोन खरीदा और उसका प्रयोग करना सीखा। अपनी नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन इस दुविधा में पड़ गई किस पर अपना श्रम लगाऊं। मैं अच्छा खाना बनाती थी, तो इसी गुण पर मोहर लगाई। शुरुआती दौर में अपने घर के राशन से खाना बनाकर लोगों को मुफ्त खिलाती थी। लोग स्वादिष्ट मुफ्त खाना पसंद करते, परंतु जब कीमत लगाई तो उनकी प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। 3-4 महीने तक हफ्ते में एक बार कोई खरीदता था। मेरी जमा पूंजी भी खत्म हो रही थी। मुझे यकीन था कि मेरे हाथ का बना लजीज खाना ग्राहकों को बेहद पसंद है। अब मैं अपनी इच्छा शक्ति पहचान गई और पाक कला में अपना कदम रख प्रसिद्धि पाने की ठान ली। जगत जाल के जरिए कंपनियों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय के कैंटीन में अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया। मेरी पाक कला और खाने के जायके को लोगों ने सराहा। मैंने सफलतापूर्वक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और हाथ बंटाने के लिए कई बेसहारा महिलाओं को आश्रय दिया। उनको प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान किया ताकि इनका परिवार खुशहाल रह सके। प्यारे बंधुओं, मैंने वैश्वीकरण का फायदा जान केवल परिश्रम, ईमानदारी और दृढ़ता से आज ये मुकाम हासिल किया है। कोई भी अगर समझदारी से अपने कौशल को पहचान, हौसला बुलंद कर मैदान में उतर जाए तो कुछ भी मुमकिन है। मुझे शांति और सब्र से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास शेष समय है।